नमस्कार और ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विचारक की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं, प्राचीन चीन से ज़्वांगज़ी, इन्हें ज़्वांगज़ो भी कहते हैं। एक ऐसा नाम जो मतलब पारंपरिक सोच को सीधी चुनौती देता है।
नमस्कार। हाँ, ज़्वांगज़ी वाकई अनोखे हैं और हमारे पास आज उनके जीवन, उनके दर्शन और उनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है द ज़्वांगज़ी, उस पर आधारित कुछ अच्छे स्रोत हैं। इनसे हमें उनके नज़रिए को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी।
हाँ, और हमारा मकसद यही है कि उनके उस खास दृष्टिकोण को समझें, कैसे उन्होंने जो चली आ रही मान्यताएं थीं उन पर सवाल उठाए और जीवन को एक अलग ढंग से, मतलब ज़्यादा सहजता से जीने का रास्ता दिखाया।
बिल्कुल।
सोचिए ज़रा, एक दार्शनिक जिसे इतना बड़ा पद, प्रधानमंत्री का पद ऑफर हो रहा हो और वो कह दे कि नहीं जी, मुझे तो कीचड़ में अपनी पूंछ घसीटना ज़्यादा पसंद है।
हाँ, ये कहानी तो कमाल की है और ये दिखाती है कि उनके लिए असल में क्या मायने रखता था।
इसी पहेली को आज खोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं उनके समय से। कैसा माहौल था जब ज़्वांगज़ी सोच रहे थे?
देखिए, ज़्वांगज़ी का समय मतलब लगभग 369 से 286 ईसा पूर्व। वो चीन के इतिहास का युद्धरत राज्यों का काल था, वॉरिंग स्टेट्स पीरियड जिसे कहते हैं। ये नाम ही बताता है कि कैसा दौर होगा। राजनीतिक उथल पुथल बहुत थी, लगातार लड़ाइयाँ हो रही थीं, समाज में एक तरह की अनिश्चितता थी। पुरानी झो राजवंश की सत्ता बिखर चुकी थी।
अच्छा, यानी काफी अराजकता का माहौल था।
हाँ, पर ऐसे ही संकट के समय में अक्सर विचारों का विस्फोट भी होता है। इसे 100 विचारधाराओं का युग भी कहा जाता है, 100 स्कूल्स ऑफ थॉट। कन्फ्यूशियस के अनुयायी थे जो नैतिकता, कर्मकांड, सामाजिक व्यवस्था पर जोर दे रहे थे।
हाँ, समाज को कैसे सुधारा जाए, इस पे फोकस था उनका।
बिल्कुल। फिर लीगलवादी थे जो कहते थे सख्त कानून ही हल है। मोइस्ट थे जो सार्वभौमिक प्रेम की बात करते थे, मतलब हर कोई अपने अपने तरीके से व्यवस्था लाने की कोशिश कर रहा था।
और इन सब के बीच ज़्वांगज़ी कहाँ खड़े थे? उनकी आवाज कैसे अलग थी?
ज़्वांगज़ी इन सब से एकदम अलग थे। जहां बाकी सब समाज को ठीक करने, उसे नियंत्रित करने में लगे थे, ज़्वांगज़ी का ध्यान व्यक्ति पर था, उसकी आंतरिक स्वतंत्रता पर, प्रकृति के साथ उसके सहज संबंध पर।
तो वो समाज सुधारक नहीं थे?
नहीं, बिल्कुल नहीं। उन पर लाओत्से और दाओवाद का असर जरूर था, लेकिन उन्होंने उसे एक बहुत ही निजी, साहित्यिक और कह सकते हैं ज्यादा मौलिक दिशा दी। वो एक तरह से कह रहे थे कि ये जो तुम बाहरी समाधान ढूंढ रहे हो, ये शायद निरर्थक हैं। असली चीज तो भीतर है, स्वाभाविकता में है।
ये दिलचस्प है कि उनके जीवन के बारे में भी बहुत ठोस जानकारी नहीं मिलती। ये बात भी उनके दर्शन से मेल खाती है ना? मतलब अज्ञात को स्वीकारना।
हाँ, ये कमाल की विडंबना है। हम निश्चित रूप से बहुत कम जानते हैं। माना जाता है कि वो सोंग राज्य के मेंग शहर के थे, और वो कहानी तो है ही, चू राज्य के राजा ने उन्हें प्रधानमंत्री बनने को कहा।
और उन्होंने मना कर दिया वो कछुए वाली मिसाल देकर।
हाँ वे, कि वो पवित्र कछुआ जो मरकर मंदिर में सोने के बक्से में पूजा जाए, उससे कहीं बेहतर वो जिंदा कछुआ है जो कीचड़ में अपनी पूंछ घसीट रहा है। ये दिखाता है कि व्यक्तिगत आज़ादी, सहज जीवन उनके लिए किसी भी पद, किसी भी सम्मान से कहीं बढ़कर था।
तो उन्होंने कैसा जीवन जिया होगा, अंदाजा क्या है?
लगता तो यही है कि बहुत साधारण जीवन जिया, शायद कोई छोटे मोटे अधिकारी रहे हों या कोई कारीगर। एक उल्लेख आता है लाख के बगीचे में काम करने वाले का। मतलब दुनियावी सफलता, सामाजिक सीढ़ी चढ़ना, इन सबको उन्होंने नकार दिया, और यही नकार उनके दर्शन का, उनके दाओ और वूवे का हिस्सा बन गया।
चलिए अब उनकी रचना पर आते हैं, द ज़्वांगज़ी। सुना, ये कोई आम फिलॉसफी की किताब नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। द ज़्वांगज़ी तो जैसे कहानियों, दंतकथाओं, रूपकों, विरोधाभासों का एक खजाना है। यह आपको तर्क से नहीं, बल्कि कल्पना और अनुभव से सोचने पे मजबूर करती है। इसमें वास्तविकता, स्वतंत्रता और दाव, यानी ब्रह्मांड का वो सहज मार्ग, उसके साथ कैसे जिए, इसकी खोज है।
और इसकी बनावट कैसी है?
इसमें पारंपरिक रूप से 33 अध्याय माने जाते हैं। जो पहले 7 अध्याय हैं, उन्हें आंतरिक अध्याय कहते हैं। ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि ये ही ज़्वांगज़ी के अपने लिखे हुए हैं।
और बाकी के
जो बाहरी और विविध अध्याय हैं, वो शायद उनके शिष्यों ने या बाद के अनुयायियों ने जोड़े हैं, लेकिन पूरा ग्रंथ ज़्वांगज़ी के विचारों की ही छाप लिए हुए हैं।
कहते हैं इसमें हास्य और कल्पना का बहुत इस्तेमाल है, ये दर्शन में थोड़ा अनगिवोनी लगता है।
हाँ, यही तो ज़्वांगज़ी की खासियत है। उन्होंने दर्शन को भारी भरकम और उबाऊ होने से बचाया। उन्होंने हास्य, व्यंग्य, कल्पनाशील कहानियों का इस्तेमाल किया गहरे सत्यों को उजागर करने के लिए। उनकी भाषा बहुत चंचल है, कई बार चौंका देती है, और उन्होंने कुछ कमाल की अवधारणाएं दी, जैसे मन का उपवास, फास्टिंग ऑफ द माइंड, या बैठकर भूल जाना, सिटिंग एंड फॉरगेटिंग। इन विचारों ने बाद में चीन में बौद्ध धर्म, खासकर ज़ेन बौद्ध धर्म को बहुत प्रभावित किया।
अच्छा, तो अब आते हैं उनके मुख्य विचारों पर। वो कौन सी बातें थीं जिन्होंने उस समय की सोच को मतलब हिलाकर रख दिया?
सबसे पहले दाओ और ज़ीरान।
हाँ, दाओ और ज़ीरान। दाओ मतलब वो प्राकृतिक हमेशा बदलता वाला प्रवाह जो पूरी सृष्टि में है।
ज़्वांगज़ी कहते हैं कि इसे बुद्धि से समझने की कोशिश मत करो, इसे पकड़ नहीं सकते, इसके साथ बस खुद को अलाइन कर लो, इसके साथ बहो।
और ज़ीरान, इसका मतलब स्वाभाविकता।
हाँ, ज़ीरान यानी स्वाभाविकता, सहजता, दाओ के साथ तालमेल में जीना। इसे समझाने के लिए ज़्वांगज़ी ने बड़े अच्छे उदाहरण दिए, जैसे वो कुशल कसाई, कसाई डिंग की कहानी।
हाँ हाँ, वो अद्भुत कहानी है कि उसका चाकू सालों साल तेज रहता था क्योंकि वो जोर से नहीं काटता था।
बिल्कुल, वो बैल की जो प्राकृतिक बनावट है, जो जोड़ों के बीच खाली जगह है, उसमें से अपना चाकू निकालता था बिना किसी रुकावट के, बिना किसी जोर के। यही ज़ीरान है, सहजता से काम करना, प्रकृति के प्रवाह के साथ एक होकर। इसका मतलब है चीजों को होने देना, उन्हें मजबूर ना करना।
और इसी से जुड़ा हुआ है वुवे, सहज कर्म जिसे कहते हैं। इसे अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं, सोचते हैं कुछ ना करना।
हाँ, ये बहुत आम गलतफहमी है। वुवे का मतलब आलस या निष्क्रियता बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब है सहज कर्म, ऐसा कर्म जो बिना प्रयास के हो, बिना अहंकार के, बिना जबरदस्ती के, जैसे पानी ढलान पर बहता है बिना कोशिश किए। ये स्थिति की मांग के अनुसार स्वाभाविक रूप से होता है, आप परिणामों से चिपके नहीं रहते, बस प्रक्रिया में सहज रहते हैं।
कमाल है, सहजता, सहज कर्म, ये तो जीवन जीने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। लेकिन ज्ञान और वास्तविकता पर उनके विचार, वो तो और भी क्रांतिकारी लगते हैं। उनका वो संशयवाद।
हाँ, उनका जो कट्टर संशयवाद, रेडिकल स्केप्टिसिज्म, और परिपेक्ष्यवाद, पर्सपेक्टिविज्म है, वो सच में दिमाग को घुमा देता है। ज़्वांगज़ी ये सवाल उठाते हैं कि क्या हम कभी भी निश्चित वस्तुनिष्ठ सत्य जान सकते हैं, क्या ये संभव भी है? उनका मानना था कि हमारा जो देखने का नजरिया है वो हमेशा सीमित होता है, अधूरा होता है।
इसी से जुड़ा है वो उनका सबसे मशहूर तितली का सपना।
बिल्कुल, वो सपना देखते हैं कि वो एक तितली बन गए हैं, खुशी से उड़ रहे हैं, फिर जाग जाते हैं और सोचते हैं कि क्या मैं ज़्वांगज़ी हूँ जिसने तितली होने का सपना देखा, या मैं एक तितली हूँ जो ज़्वांगज़ी होने का सपना देख रही है?
ये तो गजब का सवाल है, ये तो हमारी पूरी वास्तविकता की धारणा पर ही सवाल उठा देता है।
हाँ, ये दिखाता है कि जिसे हम सच मानते हैं वो शायद हमारे दृष्टिकोण पर ही निर्भर करता है। अच्छा, बुरा, सही, गलत, बड़ा, छोटा, ज़्वांगज़ी कहते हैं कि ये सारे भेद सापेक्ष है, रिलेटिव है, कोई परम सत्य शायद है ही नहीं, या हम उसे जान नहीं सकते। इसका एक मतलब ये भी है कि हमें विनम्र होना चाहिए, हमें ये मानना चाहिए कि हम सब कुछ नहीं जानते।
ये तो स्थापित ज्ञान की जड़ें हिलाने वाली बात हुई। और इसी तरह का एक और विचार है उनका, बेकार की उपयोगिता, यूजफुलनेस ऑफ द यूजलेस। ये भी बड़ा दिलचस्प है।
हाँ, बहुत दिलचस्प। सोचिए, एक ऐसा समाज जो हर चीज की उपयोगिता देखता है, हर चीज का फायदा पूछता है, उस समाज में ज़्वांगज़ी उन चीजों का जश्न मना रहे हैं जिन्हें बेकार समझा जाता है।
जैसे वो टेढ़े मेढ़े पेड़ का उदाहरण।
हाँ, वो गांठदार टेढ़ा मेढ़ा पेड़, कोई बढ़ई उसे काटता नहीं था क्योंकि उसकी लकड़ी किसी काम की नहीं थी, और इसी बेकार होने की वजह से वो पेड़ बच गया, वो लंबा जिया, खूब फैला, सबको छाया दी।
तो उसका बेकार होना ही उसकी असली उपयोगिता बन गया, जिंदा रहना, फलना फूलना।
ठीक यही बात। ज़्वांगज़ी कहते हैं कि सच्ची आजादी, सच्चा मूल्य अक्सर वही मिलता है जहां दुनिया की नजर नहीं जाती। जो चीजें दुनिया की नजर में बेकार हैं, वो शायद हमें अनावश्यक बोझ, प्रतिस्पर्धा और तनाव से बचाती हैं। वो हमें ज्यादा सहज और मुक्त जीवन जीने देती हैं। ये पारंपरिक सफलता की जो दौड़ है उस पर एक बहुत गहरा कटाक्ष है।
और मृत्यु को लेकर उनका नजरिया कैसा था? वो भी पारंपरिक सोच से अलग था?
हाँ, काफी अलग। ज्यादातर दर्शनों में मृत्यु को एक अंत, एक दुखद घटना माना जाता है, लेकिन ज्वांगजी ने मृत्यु को जीवन के अंत के रूप में नहीं देखा। उन्होंने इसे रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन का एक हिस्सा माना, एक सतत प्रक्रिया का।
रूपांतरण मतलब?
जैसे मौसम बदलते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, जैसे जीवन के अलग अलग चरण होते हैं, वैसे ही मृत्यु भी एक बदलाव है, अस्तित्व के रूप बदलने का एक तरीका। ये डरने की चीज नहीं, बल्कि प्रकृति का एक नियम है जिसे स्वीकार करना चाहिए। ये अंत नहीं, बस एक और मोड़ है।
इन विचारों को देखें तो अगर हम उनकी तुलना दूसरे विचारकों से करें, जैसे कन्फ्यूशियस से, क्या मुख्य अंतर दिखता है?
हाँ, कन्फ्यूशियस से तो उनका मतभेद बिल्कुल साफ है। वो जैसे दो ध्रुव थे। कन्फ्यूशियस का सारा जोर सामाजिक व्यवस्था, नैतिकता, कर्तव्य, रिवाजों पर था, समाज को कैसे बेहतर बनाया जाए। ज्वांगजी ठीक इसके उलट थे। वो व्यक्ति को इन्हीं सामाजिक बंधनों, रिवाजों, अपेक्षाओं से मुक्त करके प्रकृति की ओर ले जाना चाहते थे।
एक समाज को सुधार रहे थे, दूसरे व्यक्ति को समाज से छुड़ा रहे थे।
हाँ, कुछ ऐसा ही। एक का फोकस बाहर था, दूसरे का भीतर।
और लाओत्से, उन्हें तो अक्सर ज्वांगजी के साथ ही रखा जाता है, दाओवाद के दो बड़े नाम।
हाँ, दोनों दाओ की बात करते हैं, दोनों दाओवाद के केंद्र में है, पर उनका अंदाज, उनका तरीका अलग है। लाओत्से का जो ग्रंथ है दाओ दे चिंग, वो बहुत संक्षिप्त है, सूत्रात्मक है, रहस्यमयी है, थोड़ा राजनीतिक पुट भी है उसमें। ज्वांगजी का काम ज्यादा फैला हुआ है, कथात्मक है, कहानियां हैं, मजाक है, वो ज्यादा चंचल, कल्पनाशील और व्यक्तिगत चेतना की मुक्ति पर केंद्रित है। उन्होंने दाओ के विचारों को रोजमर्रा की जिंदगी, कहानियों और हास्य के जरिए ज्यादा सुलभ बनाया, ज्यादा मनोवैज्ञानिक गहराई दी।
तो ज्वांगजी का असर कितना रहा? क्या उनके ये विचार सिर्फ किताबों में रह गए या उनका कोई वास्तविक प्रभाव भी पड़ा?
नहीं, उनका प्रभाव बहुत गहरा और स्थायी रहा है, खासकर पूर्वी एशिया में, चीन, जापान, कोरिया। उनकी किताब द ज्वांगजी को चीनी साहित्य की महानतम रचनाओं में से एक माना जाता है। उसकी साहित्यिक सुंदरता भी बेजोड़ है।
और दर्शन और अध्यात्म पर?
वहां भी जबरदस्त असर है। जब बौद्ध धर्म चीन आया तो उसके जो गहरे विचार थे, जैसे शून्यता या महायान, उन्हें समझने और समझाने के लिए अक्सर ज्वांगजी के दर्शन का सहारा लिया गया। खास तौर पर ज़ेन बौद्ध धर्म, जिसे चीन में चान कहते हैं, उसके विकास में तो ज्वांगजी का बहुत बड़ा हाथ माना जाता है। ज़ेन में जो सहजता, तात्कालिकता, भाषा की सीमाओं को लेकर संदेह है, वो सब ज्वांगजी में मिलता है। कई लोग तो ज़ेन को ज्वांगजी के विचारों का ही एक तरह का बौद्ध रूप मानते हैं।
अच्छा, ये तो बड़ी बात है। और कला साहित्य पर कैसा असर रहा?
जाहिर है, बहुत गहरा। प्रकृति के प्रति उनका जो प्रेम और सम्मान था, उनकी जो सहजता की बात थी, उसने चीनी लैंडस्केप पेंटिंग को बहुत प्रभावित किया। कविताओं पर भी असर पड़ा। उनकी कल्पनाशील शैली, उनका भाषा के साथ खेलना, इसने लेखकों को हमेशा प्रेरित किया है।
और आज की बात करें, ये जो हमारी भागदौड़ वाली दुनिया है, इतनी महत्वाकांक्षी, तनाव भरी, इसमें ज्वांगजी कितने प्रासंगिक हैं? क्या आज भी उनके विचार हमारे काम आ सकते हैं?
मुझे लगता है शायद पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक हैं। आज की दुनिया में सफलता का दबाव है, हर चीज को नापने तौलने की कोशिश है, हर चीज को नियंत्रित करने की इच्छा है, प्रतिस्पर्धा बहुत है। ऐसे में ज्वांगजी की बातें, सहजता अपनाओ, निश्चितता पर सवाल उठाओ, सादगी में आजादी खोजो, ये बातें बहुत राहत देने वाली लगती हैं, एक अलग रास्ता दिखाती हैं।
यानी ये विचार हमें आज के तनाव से, उस दबाव से निपटने में मदद कर सकते हैं।
हाँ, बिल्कुल। आज माइंडफुलनेस की बात होती है, मानसिक शांति की बात होती है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता की बात होती है, या फिर वैकल्पिक जीवन शैलियों की, उन सब चर्चाओं में ज़ुआंगज़ी के विचार कहीं ना कहीं गूंजते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि बाहरी दबावों के बावजूद अपनी आंतरिक स्वतंत्रता और सहजता को कैसे बनाए रखा जाए। ये एक तरह से मनोवैज्ञानिक लचीलापन, जिसे रेजिलियंस कहते हैं, उसकी बात है, दबाव में टूटने के बजाय प्रवाह के साथ बहना।
चलिए उनके कुछ मशहूर कथन देखते हैं और समझते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। पहला, पूर्ण व्यक्ति अपने मन का उपयोग दर्पण की तरह करता है, कुछ भी पकड़ता नहीं, कुछ भी अस्वीकार नहीं करता, ग्रहणशील है पर धारण करने वाला नहीं।
ये मन की एक आदर्श स्थिति है, अनासक्ति और स्पष्टता, जैसे आईना बस दिखाता है, वो किसी चीज को पकड़ता नहीं, न किसी को धकेलता है, न कोई फैसला सुनाता है। वैसे ही मुक्त मन दुनिया को देखता है बिना अपने पूर्वाग्रहों, अपनी पसंद नापसंद के रंग में रंगे। ज्ञान चीजों या विचारों से चिपकने में नहीं, बल्कि वर्तमान क्षण में पूरी तरह मौजूद रहने और वास्तविकता को जैसा है वैसा देखने में है।
दूसरा, वो तितली वाला सपना।
हाँ,
उसे नहीं पता था कि वो ज़्वांगज़ू है जिसने तितली होने का सपना देखा था, या एक तितली है जो ज़्वांगज़ू होने का सपना देख रही है।
ये उनके संशयवाद और परिपेक्ष्यवाद की चरम सीमा है। ये हमारी यथार्थ की समझ पर, हमारे स्व की धारणा पर ही सबसे बड़ा सवाल है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी समझ कितनी सीमित हो सकती है। ये हमें अपनी मान्यताओं पर संदेह करने और दूसरों के नजरिए के प्रति ज्यादा खुला होने की चुनौती देता है, विनम्र बनाता है।
तीसरा, हर कोई उपयोगी की उपयोगिता जानता है, लेकिन कोई भी बेकार की उपयोगिता नहीं जानता।
हाँ, ये उस टेढ़े-मेढ़े पेड़ वाली कहानी का निचोड़ है। ये याद दिलाता है कि सच्चा मूल्य, सच्ची स्वतंत्रता, सच्ची सुरक्षा अक्सर उन चीजों में होती है जिन्हें समाज बेकार समझकर नजरअंदाज कर देता है। सफलता की पारंपरिक परिभाषाओं के बाहर भी जीवन है, और शायद ज्यादा सच्चा जीवन है।
और वो मछली की खुशी वाली बहस भी बड़ी मजेदार है, ज़्वांगज़ी और हुईशी के बीच।
हाँ, हुईशी उनके दोस्त थे जो तर्कशास्त्री थे। वो नदी किनारे मछलियों को देखकर कहते हैं, देखो मछलियां कितनी खुश हैं। हुईशी टोकते हैं, तुम मछली नहीं हो, तुम्हें कैसे पता कि वो खुश हैं? तो ज़्वांगज़ी पलट कर कहते हैं, तुम मैं नहीं हो, तुम्हें कैसे पता कि मुझे नहीं पता कि मछलियां खुश हैं?
ये तो तर्क को उसी के खेल में मात देना हुआ।
बिल्कुल, ये दिखाता है कि ज़्वांगज़ी सिर्फ कोरे तर्क की सीमाएं देख रहे थे। वो कह रहे थे कि ज्ञान सिर्फ लॉजिक से नहीं आता, एक सहज सहानुभूतिपूर्ण समझ भी होती है जो शायद तर्क से परे है। ये उनका चंचल अंदाज है गहरी बात कहने का।
उनके जीवन से जुड़े कुछ किस्से भी बहुत मशहूर हैं जो उनके दर्शन को और उजागर करते हैं, जैसे पत्नी की मृत्यु पर उनका वो अजीब सा व्यवहार।
हाँ, वो किस्सा वाकई चौंकाता है। उनकी पत्नी की मृत्यु हुई तो उनके दोस्त हुईशी शोक जताने गए। उन्होंने देखा कि ज़्वांगज़ी जमीन पर बैठकर एक टब को बजा रहे हैं और गा रहे हैं। हुईशी को बहुत बुरा लगा, उन्होंने टोका। तो ज़्वांगज़ी ने समझाया कि पहले तो मुझे भी दुख हुआ, पर फिर मैंने सोचा कि वो कहाँ से आई थीं और कहाँ चली गईं। वो जीवन ऊर्जा का ही एक रूप थीं जो अब बदल गया है, जैसे मौसम बदलते हैं। वो प्रकृति के महान चक्र का हिस्सा बन गई हैं। इसमें इतना रोने जैसा क्या है? ये मृत्यु को एक प्राकृतिक रूपांतरण के रूप में स्वीकार करने का अद्भुत उदाहरण है।
और वो खाली नाव वाली कहानी का क्या सबक है?
वो अहंकार से मुक्ति का सबक है। कहानी यह है कि अगर आप नाव चला रहे हैं और एक खाली नाव आपसे आकर टकरा जाए तो आपको शायद गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन अगर उस नाव में कोई आदमी हो तो आपको उस आदमी पर गुस्सा आएगा। टक्कर वही है, पर गुस्सा आ गया। क्यों? क्योंकि अब उसमें एक मैं है, एक अहंकार है। ज़्वांगज़ी कहते हैं, अपने आप को इस अहंकार से खाली कर लो, एक खाली नाव बन जाओ, फिर दुनिया की टक्करें, लोगों की बातें आपको उतनी चोट नहीं पहुंचाएंगी।
वाह, ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। लेकिन क्या उनके इन विचारों की कभी आलोचना नहीं हुई? क्या सबने ने मान लिया?
नहीं, आलोचना तो हुई है और होती रही है। सबसे आम और शायद सबसे पुरानी आलोचना यह है कि उनका दर्शन एक तरह की राजनीतिक उदासीनता सिखाता है। मतलब समाज की समस्याओं से मुंह मोड़ लेना। हॉस्कर कन्फ्यूशियस के अनुयायियों ने और बाद में मार्क्सवादियों ने कहा कि ये गैर जिम्मेदाराना रवैया है, दुनिया को सुधारने के बजाय उससे भागना है।
और उनके परिप्रेक्ष्यवाद पर कि सब नजरिए सापेक्ष हैं,
उस पर ये आरोप लगता है कि ये नैतिक सापेक्षवाद मॉरल रिलेटिविज्म की ओर ले जाता है। अगर हर नजरिया अपनी जगह ठीक है तो फिर सही गलत अच्छे बुरे का कोई आधार ही नहीं बचेगा, फिर तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। हालांकि ज़्वांगज़ी का मकसद शायद अराजकता फैलाना नहीं था, बल्कि वो कट्टरता, हठधर्मिता और ये सोचना कि सिर्फ मेरा रास्ता ही सही है, उसे चुनौती दे रहे थे।
तो अंत में अगर हम समेटे तो ज़्वांगज़ी की विरासत क्या है, आज वो हमारे लिए क्यों मायने रखते हैं?
ज़्वांगज़ी इतिहास के सबसे अनोखे, सबसे मुक्त करने वाले विचारकों में से एक है। वो हमें दिखाते हैं कि हमारा बहुत सा दुख जीवन के सहज प्रवाह से लड़ने से आता है। चीजों को अपनी मर्जी से मोड़ने की कोशिश, वास्तविकता पर अपनी कठोर श्रेणियां थोपने की कोशिश, इनसे दुख पैदा होता है। उनकी साहित्यिक प्रतिभा कमाल की थी, जिसने अमूर्त विचारों को कहानियों और रूपकों के जरिए जिंदा कर दिया।
तो उनका स्थायी महत्व किसी एक सिद्धांत या सिस्टम में नहीं, बल्कि सोचने और जीने का एक तरीका देने में है, एक लचीला, जिज्ञासु, खुला तरीका।
बिल्कुल, वो हमें नियमों का कोई सेट नहीं देते, वो हमें उकसाते हैं सवाल पूछने के लिए, अपनी मान्यताओं को हल्के ढंग से पकड़ने के लिए, अनिश्चितता को गले लगाने के लिए। वो दिखाते हैं कि कैसे हम जीवन के रहस्यमय प्रवाह के साथ बहकर ज्यादा स्वतंत्र, ज्यादा सहज और शायद ज्यादा खुश रह सकते हैं। वो एक तरह से मन पर पड़े बोझ को हल्का करते हैं।
हाँ? उनकी बातें पढ़कर या सुनकर एक अजीब सी शांति और हल्कापन महसूस होता है। ज्वांगजी शायद हमें यही याद दिलाते हैं कि कभी कभी सबसे गहरी समझ तब नहीं आती जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, बल्कि तब आती है जब हम सोचना बंद करके बस होने देते हैं, अस्तित्व के उस रहस्य को महसूस करते हैं। चलिए, आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं और श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। क्या हम अपने जीवन में उन चीजों या क्षणों के लिए थोड़ी और जगह बना सकते हैं जिन्हें दुनिया बेकार या अनुत्पादक मानती है? क्या ऐसा करके हम वास्तव में ज्यादा आजादी और हल्कापन पा सकते हैं, जैसा ज्वांगजी सुझाते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।
मानक क्लोजिंग नरेशन जैसा कि दिया गया है। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।